और रुपया ही रुपया कमा रहे हो तो आप जरा सोचो कहां तक बुद्धिमानी है। मेरे कहने का तात्पर्य उल्टा मतलब है ना कि कमाना छोड़ दे हम, कि छोड़ोगे तो नहीं, मैं फिर भी कह देता हूं आपसे छूटेगा नहीं, पर छोड़ने का मैं कहता ही नहीं। गिरफ्तार समझ जाते हुए न्याय युग तो पैसा कमाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, मैं मना नहीं करता हूं, परंतु पैसे के भरोसे भगवान का भजन छोड़ दो ये गलती करते, इस गलती का सुधार करो। और नहीं कहता हूं आप पैसे मत कमाओ, मकान मत बनाओ, आराम से मत रहो, स्त्री बच्चों का पालन मत करो, ये नहीं कहता हूं। करो पर इसके भरोसे भजन को छोड़ दिया, भगवान की तरफ इस्तीफा दे दिया, ये मनुष्यता नहीं है। इसमें तो पशु पक्षी भी लगे हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है। सूअर जी के 11 बालक बहनते 11 बच्चा एक सूअर जी एक साथ में पालन करती है। हमारी ये बहना एक दो हो जाए साथ में, ज्यादा बच्चे नहीं होते साथ, तो बच्चों से ही अगर बढ़ाई हो तो सूर्य की बहुत ज्यादा बढ़ाई होनी चाहिए, इनसे बढ़ाई नहीं है। इसका आशय ये नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में मत रहो, ये आशय नहीं, पर ऐसे भूल कैसे गए हो, मरने के बाद चाहिएगा कि नहीं, एक दो दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो साथ में पॉकेट में पैसे ले जाते हो, और वहां पूछते हो कोई सवारी मिलती है कि नहीं, वहां कोई मकान मिलेगा कि नहीं, वहां वस्तुएं मिलती है कि नहीं, तो वहां चाहिएगा। आपसे मैं पूछूंगा शरीर छोड़कर तो जाना पड़ेगा ही, ये तो यहां रह नहीं सकते, रिवाज नहीं है यहां रहने की। उस दिन के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, साथ में आपने क्या लिया है, अगर नहीं लिया है तो उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा दूसरे को, फिर आप समझदार क्या हो। समझदारी वही है कि यह मरने के बाद फिर रोना न पड़े, नहीं तो रामायण में आया है सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछता है, जो यह अपना उद्धार नहीं करता वो सिर धुनि धुनि पछता है, पछता कर तो रोना पड़ता है। अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, क्या करे कलयुग आ गया, लोग ऐसे ही हो गए, राज्य के कानून ऐसे ही हो गए, झूठ कपट का व्यवहार क्या करें, बिल्कुल झूठा दोष। कलयुग आया तो बहुत बढ़िया काम आया, कलयुग सब युग आन नहीं, इसके समान दूसरे युग सतयुग त्रेता द्वापर कोई भी नहीं, कलयुग के समान कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल बहुतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका सत्संग कलयुग का है। उस कलयुग को दोष देना ये वास्तव में दोष अपना है। आप वेशी भाई हो, व्यापारी हो, आपसे मैं पूछूं कि वस्तु बहुत सस्ती आवे और महंगी बिके तो धनवान हो जाते हो नहीं, और भाव गिर जाता है तो लाखों रुपया होता है तो लाखों के घाटा हो जाता है, और भाव तेज होता तो माल माला माल हो जाते हो। कल्पना करो एक आदमी ने रुपये मन 1.5 रुपये मन 2 रुपये मन में अनाज खरीदा, अब 20 रुपये 25 रुपये 40 रुपये मन हो गया तो लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब हुआ, रोजना चाहिए खरीद लागत लावे कहां से, बड़ा खराब हुआ। पर 2-4 हजार मन जिसके पास में पड़ा है रुपये 1.5 रुपये मन में लिया हुआ और 30-35-40 रुपये मन हो गया, वो भी कहेगा बाजार खराब हो गया, आ जा सोचो, मेरी बात समझ में आती है ना, क्या वो कहेगा कि बाजार खराब हुआ, वो तो कहते मौज होगी। ऐसे कलयुग में भगवान के नाम के लेने में जितना सतयुग में लगता था उतना ही आज समय लगता, राम 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 राम। सस्ता मिलता है इतना, और इसका दाम उठेगा कलयुग के हिसाब से, इसके नाम की इतनी कीमत अधिक होगी, तो कितने नफे की बात है ये। सस्ता माल आता है और इसमें कितनी विलक्षण बात है, कलयुग का समय है। उस कलयुग की निंदा करना, समय खराब आया है, झूठ कपट चलता है, तो आप सच्चाई से व्यापार करोगे तो क्या भगवान पर असर नहीं पड़ेगा? कितना विचित्र बात है, कैसा सुंदर अवसर मिला है। ऐसे अवसर कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कलयुग आ गया, खाने को अन्न नहीं है, उनके लिए महंगी हो गई तो चिंता होती है, पर हजारों मन अनाज पास में पड़ा है उसकी चिंता होती है क्या? 20-30-40 गुना अधिक नफा हो गया। ऐसे इस जमाने में अगर सच्चे हृदय से प्रसन्न में लग जाए और सच्चाई का पालन करे, नीति का पालन करे, तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाए। उस कलयुग को दोष देना बेसमझी है खुद की, और दोष देते हैं कलयुग को। काल ही कर्म ही, कर्म भी बड़े भागी मानुष अनुपावा, मनुष्य शरीर मिला है, फिर नरकों में जाओ, हमारा भाग्य ऐसा ही है, भाग्य मामूली नहीं है। और भगवान की भी बड़ी विशेष कृपा, जो कर्म के अनुसार जो नहीं मिलती है वो मनुष्य शरीर कब मिलेगा पता नहीं, पर जो परमात्मा कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं, तो काल ही कर्म ही इसमें ही मिथ्या दोष लगा, इसको दोष लगाना मिथ्या है। मौका मिला है बड़ा सुंदर कलयुग का मौका, मनुष्य का शरीर, गीता रामायण और भगवान का नाम, उसकी हमें पहचान हो गई। पता नहीं होता है क्या काम करना चाहिए क्या, इसका पता नहीं, बिना समझे समय बर्बाद हो जाता है। अगर वो पता लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कैसा सुंदर समय है, कैसी भगवान की कृपा है, कैसा अच्छा भाग्य है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संग। जब द्रवे दीन दयालु राघव सत्संगत साधु संगति पाई। अब मोई भा भरोसा हनुमंता, विभीषण जी कहते हैं, अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अच्छी बातें मिलती है भगवान की कृपा से, वैसी अपने को बातें मिले और फिर भी अपना उद्धार न करें और दोष लगावे काल कर्म और ईश्वर को, ये गलती। अपने सावधान होकर के और भजन में लग जाए, ये प्रकाश सत्संग के द्वारा ऐसा प्रकाश मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है ही हमारे पास में, परंतु अंधेरे में जैसे दिखता नहीं ऐसे दिखता नहीं। मनुष्य शरीर के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आपके बैं में हम धनी हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। पूछे कितना दिन, जितने दिन उसमें राजी रहे उतने दिन आपके मुफ्त में ठगाई में चले गए। अगर आप होश में आते तो ऐसे धोखे में आप नहीं जाते। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, वृत और त्यागी, क्या वो बेअकल थे? जो त्याग करके भजन में लग गए हैं, क्या उनमें समझ नहीं थी? सार चीज में लगे, सार और असार में लगे वैसा कर रहे हैं। एक संत थे, भिक्षा के लिए गए तो सेठ आया, नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया, वो पैरों पड़ता है तो संत भी उसे पैरों पड़ते। सेठ बोला कि महाराज आप पैरों कैसे पड़ते हैं, कि तुम कैसे पड़ते हो भाई, कि आप महाराज त्यागी हो, इस बात से आपकी महिमा है। अच्छा त्याग के कारण महिमा है, तो त्यागी किस लिए है? जमीन जायदाद मकान स्त्री पुत्र धन इसका आपने त्याग किया है। तो त्याग में देख रहे तुम बड़े हो कि तुम स्त्री पुत्र धन के लिए भगवान का त्याग किया है। तो बड़ी चीज भगवान होगा कि रुपया? भगवान का तुमने त्याग किया ताकि तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हुआ? अरे बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्याग, छोटा त्याग करे छोटा त्याग। तुम संसार के भरोसे भगवान को ही अस्तित्व देकर बैठ गए तो कितने तुम्हें त्यागी हो? नमस्कार तो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, तुम बड़े हो तो ऐसे त्यागी बने बैठे हो, जरा सोचो तो सही। एक पलक मारते ही प्राण चले जाएंगे, उसमें तुम्हारा धन संपत्ति वैभव क्या काम आएगा? और भगवान का भजन किया तो काम आएगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा। संत महात्मा थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उनकी रामायण को लेकर के कितनों को शांति मिलती है, कितनों की जीविका चलती है, कितने सुधर जाते हैं आदमी उन संत की वाणी से। इतना लखपति करोड़पति अरबपति भी इतना उपकार कर सकता है क्या दुनिया का? नहीं कर सकता। तो भगवत भजन करके आप दुनिया का कितना भला कर सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, कितनी विलक्षण बात है। और धन कमाने में कोई स्वाधीन नहीं है, सब लखपति नहीं बनते हैं, पर लाख नाम रोजाना ले सकते हैं आप। साधारण सारे भाई बहन अगर विचार कर रहे लाख लाख नाम लेना है तो लाख नाम ले सकते रोजाना, और लाख रुपया उम्र भर में इकट्ठा हरेक के लिए देखने को नहीं मिलता। इतना इसमें स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो वो तो करते ही नहीं, और करते हो उसमें स्वतंत्र नहीं। धन का संग्रह करते हो साथ जाएगा नहीं, और भजन पीछे रहेगा नहीं उसका संग्रह करते नहीं, तो होश कब आएगा, चेत कब होगा? जरा ध्यान को अरे ख्याल करो, होश कब आएगा बताओ? बच्चे छोटे होते हैं तो वे कहते हैं बड़े हो गए तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। माताएं भी रहती है कि हमारा लल्ला बड़ा हो जाएगा तो ठीक करेगा। तो आप कब बड़े होंगे जो सोचोगे अपने उद्धार की बात? किस दिन के लिए रखी है? बाकी बाल सफेद होने लगे, ये बुलावा आ गया है जमराज का। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत वक्ति लोका श्रणुद्धम। महाराज दशरथ जी ने दर्पण लिया और मुकुट साफ किया, श्रवण समेत भये सित केश, कान के पास में सफेद बाल हो गया। तो दशरथ जी ने कहा भाई ये वृद्धावस्था कान में आकर के ये चेत करो, अब बुलाया है, मौत का संदेश आ गया है, मरना पड़ेगा। जैसे किसी के ब्याह होता है तो आपके देश की चाल है चावल देते, पीला चावल देते, ये चावल देते, सामान लड़के ब्याह में आप आना ये चावल देते, ये जमराज के चावल आ गए तो बुलाया है। कि तो पीला होते सफेद, ब्याह का पीला होता है मौत का सफेद ही होता है, ये चावल आ गए, बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। अब जितने दिन जी गए इतना दिन जीना आगा जी मुश्किल है, और फिर भी आप चेत से नहीं। छोरे बिचारे काम करने को तैयार, कई घरों में ऐसी बात है मैंने सुनी है, बे बापू जी तुम तो भजन करो, आप टांग अड़ाते बीच में बिचारों काम में बाधा होती, छोरे उकता जाते, क्यों आप पता करो? ये माया बूढ़ी बूढ़ी बहुओं को तंग कर लेती है, वे काम कर रहे। हाँ बेटा तुम करो, बहुत अच्छी बात, उनको कर्ण नहीं दे रहे, आप बीच में टांग अड़ाती रहे काम बिगड़ता है, अरे वे नाराज होती है, अरे आपकी आफत होती है। तो भजन का मौका मिला, अच्छी बात है, हाँ बेटा ये लो चाबी, ये काम करो। कहते वो बिगाड़ देंगे, आज मर जाओ तो कौन सुधारेगा, तो एक दो साल पहले मर जाओ, भजन तो हो जाए, मरोगे अंत में तो पहले मर करके उनको दे दो, बोलो बेटा वो काम करो, कि महाराज भी काम बिगाड़ते हैं तो उनको सुधारने की बात कहो, तंग क्यों करते हो, मालिक पे पड़ेगी, जिस दिन बहू आ जाए उस दिन समझो मालिक ही आ गई, घर की मालिक ही आ गई, अब थोड़ा काम लेके गाड़ी अपने कर दो, उतने दिन अपने रोटी खाओ, इस बात से काम करो, मालकिन तो ये है, मान लो तो सुखी हो जाओगे, आपके भी छोरा बड़े हो जाओ तो उनको काम धीरे धीरे समझा दो, अब करो भाई। अरे राज में नौकरी करते हैं भाई, रिटायर होते हैं तो आप दुरुस्त में रहते, रिटायर कब होंगे, असली काम जिसके लिए आना हुआ वो कब करोगे, ये सोचा है क्या, अंधाधुंध होकर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हैं, लाय लग रही है पैसों की, नतीजा क्या होगा, पैसे कमाकर छोड़कर मरोगे, आप सोचते नहीं हो, इधर ध्यान नहीं देते हो। कलकत्ते में एक भाई से मैंने कहा कि तुम पैसा ही पैसा कमाते हो, आज बैठे भजन करो तो पीढ़ियां तक खाकर जितनी रोटी आपके पास है, फिर भजन क्यों नहीं करते, क्यों कमाते हो। उस सज्जन आदमी था, उसने कहा स्वामी जी इसका हमारे पास जवाब नहीं है, क्या कमी है साहब, भगवान के भजन में लग जाओ, अवसर आया बड़ा सुंदर अवसर है, परंतु क्या जान पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत, जैसे मतवाला होता है दारू पिया हुआ, इस तरह से दारू पिए हुए पर चलते हैं, ख्याल नहीं करते हो, मौत आ रही है नजीक, कब चेतोगे, कब भजन स्मरण करोगे, अपना उद्धार कब करोगे, जिस काम के लिए मानव शरीर मिला भाइयों बहनों वो काम पहले करो, पीछे समय बच जाए तो और करेंगे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति पहले करना, उसमें सब स्वतंत्र हो, धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब धन मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, चौड़े पड़ा हुआ है, मना मुख राम कही दे रहे, मन मुख राम को खुली चीज है, खुला माल पड़ा हुआ, देशगत देरी करते हो, वो तो लेते नहीं, जो साथ में चलता है वो लेते नहीं, और लेते वो साथ चलता नहीं, क्या दशा होगी, जरा सोचो, आपके साथ में अच्छा काम चलेगा, भजन स्मरण करोगे, साथ में पूंजी चलेगी बड़ी बढ़िया, लोग भी याद करेंगे, सद्भाव से याद करेंगे, दुष्टता का काम करोगे मर जाने पर राजी हो जाएंगे लोग। एक पंडित से काशी से पढ़ करके आए, साधारण ब्राह्मण बेचारे पुस्तक लदी हुई आए, शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई, पास में छाता वाता था नहीं, तो वर्षा आई देख करके एक मकान के भीतर दरवाजा बड़ा पोल थी उसके भीतर खड़े रह गए, उस दरवाजे उसके ऊपर एक बेशिया रहती थी, तो एक राम नाम सत है आदमी जा रहा था, मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो उसने कहा छोरी जाओ ये स्वर्ग में गया कि नरक में, निकल करो, छोरी गई सब, पंडित जी ठहर गए कि ऐसी कैसी विद्या है, मरने वाले कैसे पता लगे, थोड़ी देर में आ गया तो ये तो नरकों में गया, दूजा मुर्दा जा रहा था इनको देखो ये स्वर्ग में गया, पंडित जी ने कहा इतने वर्ष में काशी में रहा कितनी पुस्तकें पढ़ी, अब ये पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया, तो ये विद्या तो और ही हमें सीखनी है, ऊपर चले गए, देखा तो बेशिया ने देखा कि मेरा ग्राहक तो है नहीं, अब पुस्तकें लदी हुई पंडित को पहचान लेती, बेशक मान होशियार होती है, कहा कैसे आए कि माता जी मैं पूछ, माता मेरे को मत कहो मैं तो एक पेशा हूं, तुम्हारे मांस बेच बहन ही हमारी क्या क्या बात है कि तेरे छोकरी से कहा उन आखिरी तो स्वर्ग में गया जी नरकों में गया, ये क्या विद्या हम जानना चाहते। तो ऐश्वर्य आए बता महाराज को बता तेरे कैसे परीक्षा करी, ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया दोनों की परीक्षा कैसे करी। तो वो कहने लगी महाराज वो मुर्दा ले जा रहे थे तो मैंने ये पूछा कि ये कहां से आए किस मोहल्ले का है। उस मोहल्ले में पहुंची तो लोग रो रहे थे इस घर का ये आदमी मर गया। पता लगा तो पड़ोसियों के घर से उनमें मैंने जा करके सुना कि वो आदमी मर गया कि निहाल हो गए। ये चुगली करता था, राज में फंसा देता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी झूठी गवाहियां देकर फंसा देता था, कुत्ता मर गया घर की ऐंठ गई बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी आफत करता था। ऐसी बातें मैं कई घरों में सुनी। तो आकर कहते नरकों में गया और दूसरा वो आया उसकी देखा भाई मुर्दा कहाँ का है। उसमें जाकर देखा आपस में लोग बातें करते थे घरों में कि वो आदमी मर गया, ओ राम 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 गजब हो गया। अपने तो मोहल्ले का एक प्रकाश था, कोई संत महात्मा आते सत्संग कराता, लोगों को कहीं कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता, दवाई का प्रबंध करता, कोई किसी में आफत आ जाए तो उसकी सहायता करता, अपने तन से मन से धन से सब तरह से सहायता करता। वो चला गया हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया। एक ही ऐसा आदमी था, ऐसी लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने आकर ये स्वर्ग में गया। पंडित जी कहे ये तो बातें पुस्तकों में लिखी है, अच्छी करने करता है उसकी अच्छी गति होती है और बुरा काम करता है दुर्गति होती है, पर ये तो हमारे अकल में ही नहीं आई। तो भाई अच्छे पुरुष चले जाते हैं तो भी पीछे महिमा होती है, अरे बुरे मर जाते हैं तो लोग राजी होते कि न्याय हुआ आपत मिटी। तो अपने को कैसा बनना है, ऐसा बनना है कि आफत मिटी, ये आपके हाथ की बात है, इसमें भाग्य की बात नहीं है, इसमें योग्यता की बात नहीं है, इसमें केवल उपकार करने की आपकी दृष्टि है उसी बात। बद्रीनारायण जा रहे पहले जमाने में पैदल जाते थे तो 10 15 20 50 आदमी जा रहे हैं, उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी। बद्रीनारायण पैदल जाते वाली बूढ़ी माताएं हाथ में लाठी ली हुई, उसके सहारे से बद्रीनारायण हो जाती है माताएं, इनमें हिम्मत होती है और ठाकुर जी बल देते मदद करते। अब ये रात्रि में जा किसी चट्टी पर ठहरे, चट्टी पर ठहरे तो बेचारे बोझा लिए बैठे नींद आ गई, थके हुए बूढ़ी बड़ी माई भाई कमजोर आदमी, दो चार आदमी उसमें अच्छे चट उठे चले गए, जल भर दिया, लकड़ी ले आए, रसोई बनाई, दाल बाटी बना करके और कहा लड़का भोजन करो, नींद में सोती हुई उठा करके बड़ा भोजन पहुंच। अब थके और भूख लगी हुई गर्म गर्म रोटी और दाल भी देते हैं पा लेते हैं फिर सो जाते हैं। तो बद्रीनाथ तो सब जाते हैं पर ऐसे सेवा करने वालों को जो फल मिलता है सबको मिलेगा। तीर्थ यात्री भगवान बद्रीनारायण के जा रहे हैं उनकी सेवा का मौका मिला है। तो जिनका स्वभाव ऐसा है दूसरों का हित करने का वो जहां जाएंगे वहां हित करेंगे, वहां भी ये सेवा करेंगे तो उनका कितना पुण्य बढ़ेगा। और ये आदत आप बढ़ा सकते हो, ऐसा आराम करने की आदत कि हुक्म चलावे हमारा काम कोई करे, इसमें लाभ नहीं है, लाभ सेवा करने में दूसरे को सुख पहुंचाने में है। तो सुख पहुंचाने की भगत आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपना लाभ रहे आराम मिले सुख मिले धन मेरे को मिले, ये लोग तो कुत्ते गधा में भी होता है, ये भी कोई मनुष्यता है। मनुष्यता तो त्याग करने में सेवा करने में दूसरों के सुख पहुंचाने में है, वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य जन्म क्यों लिया? हमारी जगह कोई अच्छा प्राणी आता, वो अपना कल्याण कर लेता, तो सीट क्यों रोकी? आकर बैठ गए। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवती, भगवान गीता में कहते हैं वो अघायु है, उसकी उम्र पाप है कोरा। मोघम से जीवती निरर्थक जीता है, मर जाए तो अच्छा है, गाली देते हैं भगवान, क्या काम का वो जीता रे? जीवत जैसे प्रेत, भजन बिन जीवत जैसे प्रेत, जीता ही प्रेत के समान है। तो भाइयों बहनों, अपना शरीर है, बड़ा सुंदर मिला है, मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, भगवान का भजन करो, दुनिया की सेवा करो, अपने धन हो तो धन से करो, शरीर है तो शरीर से करो, नहीं तो मन से ही सबका भला चाहो, मन से भी भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, ऐसे भाव रखो, आपको पुण्य हो जाएगा, मुफ्त में कर सको जितना करके पुण्य कर लो, दे सको जरा देकर कर लो, और ये नहीं हो तो भाव शुद्ध बना लो, भाव शुद्ध बनाने से भी आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं उनके भाव अच्छे हुए, उपकार करने के भाव हुए, उनसे भी संत बन गए हैं। हमारी बहना भी चाहे तो मीराबाई बन सकती है, पूरीबाई बन सकती है, कर्माबाई बन सकती है, कर्मिति बाई बन सकती है, भाव से और क्या फर्क था बताओ? जैसे ये बहना ऐसी बहना मीराबाई आदि को हुई, उनकी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान में लग गई, कर्माबाई, कर्मिति बाई, पूरीबाई, भगवान के भजन में लग गई, इस वास्ते उनकी इतनी महिमा है। महाराज वो पूरी जाटनी जोधपुर रियासत में हुई है, जाट पढ़ा, पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं है, गोबर था बड़ी ठेपड़ी, उसमें कहते ये मेरी है, दूसरी कहते मेरी है, तो तेरी नहीं है मेरी है। अब बोली क्या पैसा था उसके पास में कि पहचान क्या, किसको तोड़ कर देखो, कान के लगाओ, अगर नाम आता है राम 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 तब तो हमारी नहीं तेरी। पंढरपुर में एक समारोह है, चोखा मेला, उनका नाम था चोखा मेला, समाज से भगवान के भजन करते थे, विठल 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 विठल। मंगल बेरिया पास में एक गांव है, उसमें मकान बन रहा था, उस मकान में काम करने वाले ये थे, वो समायर भी ईंट सुना लेगा था, पहुंचा था, काम करता था, अचानक वो गिर गया, मकान गिर गया, उसमें दब गया, उसे दबने पर मर गया, उसको ठीक करते करते 15-20 महीना लग गया। अब वो शरीर पहचानने में नहीं आता कि चोखा में लगा शरीर कौन सा है, कभी हड्डियां रह गई, कैसे मुझे शरीर चेहरा दिखे तो पहचान रहे, पहचान नामदेव जी महाराज कहा महाराज चोखा मेला मर गया है, उसकी पहचान क्या हो हड्डी? उनकी पहचान सीधी है, हड्डियों कान लगाओ, हड्डी में कान लगाओ, हड्डी में बिठल 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 आवाज है, ये चोखा मेला का हड्डी पहचान को आप, कितनी विचित्र बात है, हड्डियों में असर पहुंच गया, उनकी हड्डियों में विलक्षण था। संत महात्मा जहां हो गए हैं उनकी दाह क्रिया की जाए, वहां जाकर बैठो भगवान मन लग जाएगा, और मसाणों में जाकर बैठो हृदय हलचल हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। मुर्दा मर गए तो उनकी हवा मांग खराब है, मसाण भूमि खराब है, ऐसा संतों को दाह क्रिया कर जलाया है, वहां जाकर बैठो तो शांति मिलेगी। क्या फर्क है? फर्क बड़ा भारी है, असली काम में लगा दी, मरने के बाद मुर्दे में फर्क होता है, मुर्दे की चीज दी जाए आपको, जूती है, कपड़ा है, ये बोले ना हम मुर्दे नहीं जाएंगे, और संत चले गए, उनका कपड़ा भी मिल गया छोटा, ये तो हम रखेंगे, हमारी पूजा में रखेंगे। क्या मुर्दे की चीज नहीं है? उनकी चीज पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है? ममता नहीं है, ममता जिसमें होती है वो चीज अपवित्र हो जाती है। तो उनकी चीज पवित्र होती है, उनके चरित्र पवित्र होते हैं, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनकी यादगिरी पवित्र होती है। ऐसा संस्मरणार्थ सूत सद्य शुद्धंती नहीं क्रिया, उनके याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। भागवत में लिखा कितनी विचित्र बात है, क्यों हो जाते हैं? भगवान की भजन करने से। विदुर जी महाराज आए तीर्थ यात्रा करके, युद्ध के समय वे चले गए तीर्थ यात्रा में, आए पीछे, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवत विधा भागवता, आपके जैसे भगवान के भक्त हैं, ये जो तीर्थों में जाते हैं आप जैसे भगत, वे तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। पापी जाते हैं वो तीर्थ में पवित्र अपने पाप छोड़ जाते हैं, पापों के वहां रहने से वे पापी बन जाते हैं। तीर्थ आप लोग जाकर स्नान करते हो, पाप नष्ट हो जाते हैं। एक साधु की बात सुनी मैंने, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, ऐसा स्तोत्र है संस्कृत में, इतना बड़ा वो पुस्तक मैंने पढ़ा, उसकी बात सुनी है। एक दंडी स्वामी थे, संस्कृत के अच्छे बड़े विद्वान दंडी स्वामी, तो वे सभी खंडन करते साधुओं का कि ये साधु है वैध नहीं है, अवैध है, इनको शास्त्र की आज्ञा नहीं है, साधु बनने का हुक्म नहीं है, ये खराब, ऐसी निंदा करी। निंदा करते करते महाराज कोड निकी आई उनको, अच्छे संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त अच्छे पुरुष, उनकी निंदा करने से कोड निकली आई। अब घबराए कब क्या करें, तो किसी ने कहा तुमने संतों की निंदा की है तो किसी संतों की सेवा करो, अच्छे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हो पहुंच जाओ। तुमने ब्राह्मण पने का अभिमान किया, दंडी स्वामी मैं ऊंचे दर्जे का हूं विद्वान हूं, ऐसे अगर तिरस्कार किया उसका नतीजा है कोड निकली, आप जाओ। तो पीली भर शहर पीली भी, वहां उसके पास में एक जगह संत रहते थे, लोगों ने कहा उन संतों के पास जाओ, बड़े दयालु है, जीवन मुक्त महापुरुष तत्वज्ञ है। तो वहां पहुंचे तो महाराज पूछा बंद थी तो बाहर ही ठहर गए। रात्रि में दोस्तियां आई, वे आई तो महाराज जहां स्नान करते थे वो थोड़ा सा जल इकट्ठा हुआ था, उस जल में उन्होंने थोड़ा अपना शरीर लगाया ऐसे, तो वो काला पड़ा उठ मिटकर रूपवती हो गई। तो उस दंडी स्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, कैसे आई हो? क्या हम गंगा जी और जमुना जी है, दुनिया को पवित्र करने वाले गंगा जमुना है, तो यहाँ कैसे आई? कि दुनिया का पाप है हमारे लग गया, तो तुमने देखा ना कैसा स्वरूप था हमारा, और यहाँ का जल लगाते कितनी पवित्र हो गई। उन संतों की जल जिसे जल से चरणों के जल से हमारे पाप दूर हो गए, शुद्ध हो गए। ये ऋषि महाराज ने कहा बहुत विदा भागवत, आप जैसे भागवत है वे तीर्थ स्वरूप आप बड़े हुए, तीर्थ ही कुरगंत तीर्थानी अतीर्थ हो गए हैं, उनको आप तीर्थ बनाते हो। किस से शांत स्थेन गदा व्रता, गदाधर भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है, भगवान के ध्यान में मस्त रहते हो, इस वास्ते आप पवित्र हो गए, तीर्थों को पवित्र करने वाले, कारण के भगवान याद है ना, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान के याद करने से वे पवित्र हो जाए, नहीं तीर्थ पवित्र हो जाए, कितने विलक्षण बात है। और इसमें सब स्वतंत्र, भगवान को याद करो कोई मना नहीं, जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम सबका उगा शीर, सबका शीर है, भगवान का नाम लेने में कौन मना कर सकता, बहन हो भाई हो कोई हो, किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का क्या नहीं, भगवान के भजन की मना नहीं। वेदाधिक वेद पढ़ोगे आप, गायत्री पढ़ोगे तो उसमें कहे भाई तुम्हारा अधिकार नहीं, ये अलग अलग अधिकार, पर भगवान के चरणों में शरण जाने के लिए सब अधिकार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई काम हो, वे भी भगवान के चरणों में जा सकते हैं। देखो भाई, माँ कहने का सबको अधिकार है। सपूत से सपूत भी माँ कह सकता है, और कपूत से कपूत भी माँ कह सकता है। नहीं कह सकता क्या? कपूत हो गया, पूत तो है ही, माँ है मेरी। उस माँ के कहने में जितने लड़के सबके सब अधिकारी। ऐसे नहीं कह, सपूत तो माँ कह सकते हैं, कपूत माँ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। माँ राजी नाराजी हो जो कुछ कह दे, धमका दे, चटका दे, कह दे, परंतु माँ कहने का अधिकारी सब है। ऐसे राम जी का नाम लेने के सब अधिकारी, राम जी मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, ऐसे कहने को सब अधिकार। तुम्हें माता पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु सखा त्वमेव, कितनी विचित्र बात है। वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इस संसार की कामना पूरी नहीं होगी, कामना मिट जाएगी, परवाह नहीं होगी। अर्ब खरब लो द्रव्य उदय अस्त लो राज तुलसी, जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, बताओ क्या काम आएगा। सूर्य अस्त नहीं होता इतना राज्य में, मरे तो मरे तो अरबो खरबो द्रव्य मरे तब, और भद्र किया भगवान का मरे तब साथ में जाएगा। उसके देखने से शांति मिलती है, संग करने से शांति मिलती है, बातों से शांति मिलती है। भजन किया, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबाई है कस्तूरी की बात, ये कस्तूरी की सुगंधी है, ये नष्ट नहीं होती, ये साथ जाती है। आप करके देख लो, जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों की कितनी विचित्र अवस्था हुई। केशव कवि हुए केशव कवि, रामचंद्रिका बनाई होगा राम जी की लीला लिखी, उसको किसी ने पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, तो उसने कहा केशव की बढ़िया, केशव कवि हमारी कविता बढ़िया है। कहते गोस्वामी की वाणी ये कविता नहीं है, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, हम कवि की बात बता रहे, कवि में कविता मेरी बढ़िया। गोस्वामी महाराज कवि नहीं है, ये संत है, इनकी वाणी बड़ी विचित्र है, इसमें बड़ी ताकत है जीव के उद्धार करने की। कवियों की कविता में सुंदरता है पर उद्धार करने की ताकत नहीं है, इनकी वाणी में विलक्षणता है। तो संत लोग हैं, उनकी वाणी विचित्र, उनके दर्शन विचित्र, उनका संग विचित्र। क्यों विचित्र है? कि भगवान में लगे हैं। ये देखो इतना शब्द करता है, ये बिजली का संबंध है, अगर वो तार काट दिया जाए तो इसमें ताकत रहेगी? कितना शब्द फैलाता है, कितनों को जाता है। संबंध बिजली के साथ होने से वो संबंध टूट जाए तो ऐसे पड़ेगा कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संबंध होने से संत महात्माओं में विचित्रता आ जाती है, अगर वो संबंध टूट जाए उधर से तो जयराम जी की काबा लूटी गोपिकार हुई, अर्जुन हुई बाण, विजय करी महाभारत में, पर भगवान पधारने के बाद में ले गए लोगों लूट दी, हिसाब में दिया जिसको अर्जुन गई हुई बाण, कुछ नहीं। ये शक्ति भगवान की है, वो भगवान की शक्ति नहीं हो तो क्या करें? इसमें बिजली नहीं हो तो ताकत है इसमें, यंत्र में इतना शब्द प्रकट कर दे। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ने पर उसमें विचित्रता आ जाती है, वो अपने घर की नहीं है, भगवान की है। जहां अपनी मान लेता है वहां अभिमान आ जाता है, अभिमान है आसुरी संपत्ति, निबंध आया आसुरी मता, और भगवान की मानता है तो मौज करो आनंद ही आनंद, भगवान की सहायता से विलक्षणता हो जाती है। तो भगवान की तो है आवश्यकता, संसार की है कामना, कामना मिटाने की होती है, आवश्यकता पूरी करने की होती है। वो किसी के भाग्यशाली के जग जाए भीतर में तो आपके आपका कल्याण, दूसरों का कल्याण कर दो, इतनी शक्ति आप में आ गया। ये हमारी बहनों है, भाई है, कोई क्यों हो, साधारण दिख है कुछ काम करने से, पूरी भाई जात नहीं थी, जोधपुर के दरबार ले गए उसको। आज खेतों में बैठी है, फौज की फौज आई, लो बेटा रोटी खाओ, रोटी फलियों का साग सबको दे दिया। दरबार ने देखा रही क्या बात है, जात नहीं मांगू से ऊंचा ऊंचा गागरी पड़ा मेरे से, और सामने ऊपर लोही ऑर्डर में ग्रामीण खेती करने वाले राजा ले गए। कहते रानियों को उपदेश कौन करे, पुरुष तो जा नहीं सकते, उसको ले गए। अजा कहा कहते इनको कथा सत्संग सुनाओ। वे बैठे महाराज सिंहासन पर, बढ़िया बढ़िया आसन है, पीढ़ा है, उसके ऊपर श्रृंगार किए हुए बैठे रानियों राज दरबार। वो गई जाकर बोली, ध्यान देना अपनी भाषा में, गणो गंठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली धाने यूं कहे थे राम भजो रांडो। सीधी बात, अरे रांडो राम राम को बैठ गई समझे, ये काया गहरा उठा तन की शोभा, हीरार पन्नार पैर लिया, क्या होगा इसे, आज मर जाओ तो क्या काम आएगा, ये गहरा गाटा तन की शोभा, अरे काया काचो भरो, ओ काचो भर दो फूल जाएगा, फूले जा रहे ये हो गए थे राम भजो रांडो। रीस नहीं करी इसने, सीधी सीधी बात कह दी अपनी भाषा में, समझे, आदर करते हैं महाराज सब लोग, क्योंकि उसको लेना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना है, अरे भगवान में मस्त है अपने, क्या गर्ज है उनके मन में, कह दी सीधी सीधी बात। ऐसे हमारे देश में भगत हुए, साधारण जाति में हुए, ऊंची जाति में हुए, ब्राह्मणों में हुए, पंडितों में हुए, अपने आदमियों में हुए, भगवान की तरफ लगे हुए विलक्षण हो गए, ऐसी विचित्रता है। नारायण नारायण, अब पूछो, अब जो शंका है वो पूछो, मैंने इतनी बातें कही उसमें आपके समझ में नहीं आई वो पूछो, थोड़ी समझ में रही कहीं शंका रहेगी तो पूछो, क्यों भाई हमें जाना है, कल यहां से जाना है, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, अगर दिया हुआ समय है तो आपके पूछना हो तो पूछ लें। सुबह तो ये बताया था कि समय है ये बड़ा कीमती है मानव जीवन का, अभी बताया है कि आपकी इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, उसमें आप अपना उद्धार कर सकते हैं, और मानव शरीर का लाभ इसी में है, और कुछ ले ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, धोखा हो जाएगा, देखो ये काम हो सकता है, और क्या कर लोगे, रुपया कमा लो क्या होगा, छूट जाएगा, बड़े बड़े बढ़िया मकान बना दिया, ऐसा आराम किया तो क्या हो गया, ये तो छूट जाएगा सभी, भाग्य में लेगा तो कुत्तों को और गधों को मिल जाता है, उसमें अपना समय बर्बाद कर देना, ये मनुष्यपना नहीं है, मनुष्यपना तो उसी में ही तो भगवान के भजनों में लग गया। अब बोलो इसमें शंका हो तो बोलो,
Thank you. Right.